स्वागतमस्तु भो मित्रगणाः, रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे अहं लीना मेहेन्दळे पुनरपि एकवारम् उपस्थिता अस्मि। तथा च संस्कृतव्याकरणस्य एकस्य लघुपाठस्य आरम्भं करोमि। भो मित्रगणाः, गतरविवासरे वयं कृदन्तप्रत्ययान् पठितवन्तः। अद्य अपि कांश्चिन् कृदन्त तथा तद्धित् प्रत्ययान् पठिष्यामः, शृण्वन्तु भवन्तः। तो मित्रों, स्वागत है रेडियो मधुबन के इस मंच पर। और पिछले रविवार की तरह आज भी हम थोड़ा सा कृदंत और तद्धित प्रत्ययों को पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से तुम्हें स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि संस्कृत में प्रत्यय लगाने की कई विधियाँ हैं जिनके अलग अलग नियम और उपयोग हैं। जब हम शब्द रूप सीखने के लिए विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं तो उन प्रत्ययों के कारण हमें बोध होता है कि जो व्यक्ति हमारे सम्मुख है वह किस प्रकार से किसी काम को संपन्न कर रहा है। जैसे देवाः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम्। तो ये विभक्ति के प्रत्यय हो गए। इसमें जो मूल शब्द है देव, उसके आगे अलग अलग विभक्ति के प्रत्यय लगा करके और साथ ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए वांछित प्रत्यय लगा करके हमने इस प्रकार देव शब्द के अलग अलग रूप देखे, जिनसे हमें ये बोध होता है कि देव किस प्रकार से किसी कार्य को संपन्न करेंगे। इसी प्रकार जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी, उनके काल को दर्शाने के लिए, भूत वर्तमान और भविष्य काल को दर्शाने के लिए जो 10 प्रकार के अलग अलग लकार हमने पिछले अध्यायों में देखे, उन 10 लकारों के भी अपने अपने प्रत्यय होते हैं जो मूल क्रिया के साथ लगते हैं। और प्रत्येक काल के लिए, प्रत्येक लकार के लिए, जैसे लट लिट लुट लुट लोट लंग लुंग लुंग, आशीर्लिंग और विधिलिंग इत्यादि जो 10 लकार हैं, तो इनके हर लकार के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से प्रत्येक लकार के भी 9 तरह के रूप होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय लगा करके एक बहुत विस्तृत शब्द भंडार बढ़ाने की प्रक्रिया संस्कृत में चलती है। पर विभक्ति और लकार के प्रत्ययों के अलावा भी संस्कृत में एक व्यवस्था और है जहाँ शब्दों के आगे कुछ अन्य तरह के प्रत्यय भी लगते हैं। इन्हें भी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय क्रिया के आगे लगते हैं, लेकिन ये प्रत्यय लगने के बाद क्रिया का जो रूप बनता है वह क्रिया न रहकर विशेषण या संज्ञा बन जाता है। और संज्ञा के शब्द रूप जिस प्रकार चलते हैं उसी प्रकार इन नए शब्दों के शब्द रूप भी चलते हैं। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय भी लगाए जाते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के लिए लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह एक अति विस्तृत अध्याय है प्रत्ययों का। और गत रविवार हमने कुछ 3-4 कृदंत प्रत्यय देखे हैं, इस रविवार हम कुछ तद्धित प्रत्ययों को देखेंगे। और मित्रों, अब एक मजे की बात देखते हैं कि थोड़े से तद्धित प्रत्ययों की तुलना हम इन कृदंत प्रत्ययों के साथ कर सकते हैं। तो एक तद्धित प्रत्यय है इतच, और जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो इत केवल बचता है और अंतिम जो हलंत च है वह लोप हो जाता है। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कृदंत प्रत्यय के साथ इसकी तुलना करके हम देखते हैं। तो पुष्प में जब इतच प्रत्यय लगता है तो उसका रूप बन जाता है पुष्पिता, अर्थात फूल की तरह खिला हुआ। तो फूल या पुष्प, यह तो संज्ञा शब्द है और उसका रूप जब पुष्पितः बन जाता है तो संज्ञा ही होता है, लेकिन मानो उसमें क्रिया का बोध होता है कि फूल की तरह खिल जाना। इसी प्रकार दुख के साथ जब इतच प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है दुखितः, अर्थात जो कोई दुखी हो जाता है वह दुखितः। पंडा के साथ जब इतच प्रत्यय जुड़ता है तो उसका रूप बन जाता है पंडितः, अर्थात जो पढ़ चुका हो। पिपासितः, अर्थात जो अत्यंत प्यासा हो। बुभुक्षितः, अर्थात जो भूखा हो। तो इस अंतिम तः की वजह से हमें कई बार संदेह हो सकता है कि क्या यह कृदंत प्रत्यय है, जैसे गतः, विगतः, हतः, कथितः इत्यादि। तो यह ध्यान देना पड़ेगा कि अंतिम अक्षर तः होते हुए भी अगर उसके पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम या अव्यय या विशेषण आया हो तो वह कृदंत नहीं बल्कि इतच प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्यय, उसे हमें याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक और तुलना करना आवश्यक है। एक प्रत्यय है जो है मतुप, और इसका अर्थ होता है किसी गुण के द्योतक। और मतुप प्रत्यय लगाने के समय जिस शब्द के आगे यह प्रत्यय लगाना हो वहाँ उप का लोप हो जाता है और बचता है केवल म, लेकिन कई बार उस म का व हो जाता है। जिस शब्द में मतुप प्रत्यय लगना है वह शब्द अगर अकारांत है या आकारांत हो तो उसके आगे म के बजाय व का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो मतुप प्रत्यय के साथ जो शब्द बने उनका हम उदाहरण देखेंगे। श्रद्धा के साथ मतुप प्रत्यय लगा करके शब्द बना श्रद्धावान, शील से बना शीलवान, ज्ञान से बना ज्ञानवान, धन से बना धनवान, रूप से बना रूपवान, विद्यावान, गुणवान, भगवान, दयावान, क्षमावान। तो अब इन शब्दों में अंतिम अक्षर वान आ गए हैं तो हमें यह थोड़ा सा भ्रम या संदेह हो सकता है कि क्या यह तवतु प्रत्यय हैं, लेकिन इस भेद को याद रखना आवश्यक है कि तवतु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और वह केवल क्रिया के साथ लगता है, जबकि मतुप प्रत्यय संज्ञा के साथ लगता है। हालांकि दोनों ही प्रत्ययों के कारण बनने वाले नए शब्द में अंतिम अक्षर वान होते हैं, जैसे लिखितवान, पीतवान, कृतवान, गतवान, दीप्तवान, नष्टवान। यह कृदंत प्रत्यय हैं और संज्ञा के साथ मतुप प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बने जैसे शीलवान, वे तद्धित प्रत्यय हैं। तो इस भेद को हम याद रखेंगे और कृदंत और तद्धित प्रत्ययों की पढ़ाई अगले 2-3 प्रकरणों में हम पूरी करेंगे। तो पुनर्मिलामि, नमस्करोमि। तुम सुनते रहो पठामि संस्कृतम्, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।